December 1987. अभ्यक्त मुरली कुमारों से मुलाकात। पहला ग्रुप, सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के है। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंची स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हैं। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एकर स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसा कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ। लुढ़कने वाले लौटे नहीं, कभी कहां लुढ़क जाओ कभी कहां, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले अविनाशी है, अविनाशी बनने वाले बनाने वाले हैं। ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हरेक कुमार क्या हो जाए, चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आज प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सेवा सहज हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो। इसको कहते हैं कमाल। 6 December 1987। दो ग्रुप है कुमारों के। पहला ग्रुप, सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार होना, कर्म योगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है, तीसरा हल्के है, जिम्मेवारी नहीं है, और उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े है। तो कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाने चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है कौन सी स्थिति, ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंची स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या फिर कभी हार कभी जीत, या खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो क्या होगा, एक स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। सहयोगी अर्थात कर्मयोगी, निरंतर योगी, क्यों? क्योंकि हल्के हैं, निर्बंधन है, बोझ नहीं है, क्योंकि जिम्मेवारी नहीं है, और एक क्रस स्थिति होगी। विजयी कुमार कहलाएंगे। तो विजयी अर्थात कभी हार कभी जीत ऐसा नहीं, निरंतर विजय, निरंतर विजय, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत। तो कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो क्या होगा? एक स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं होगा। हार अर्थात असफलता अर्थात इस जीवन में हार किसको कहेंगे? किस हार की बातें चल रही है? सहज योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी, एकर स्थिति, विजयी कुमार। विजयी अर्थात हार नहीं, एक की लगन में मगन का निरंतर अनुभव, निरंतर योगी। कभी हार और कभी जीत, ये संस्कार ना हो। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। हार अर्थात असफलता, हार अर्थात इस ब्राह्मण जीवन में हार किसको कहेंगे? स्थिति का नीचे गिर जाना हार है। एक और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं हो रहा है। रुकती कला, ठहरती कला, मानसिक उतार चढ़ाव और कर्मेंद्रियों के वश हो जाना, कर्मेंद्रिय जीत बनने का अनुभव ना होना, या फिर कहो कर्मेंद्रिया बीच में ही धोखा दे देना। कर्मेंद्रिया धोखा देना, आंख ने धोखा दे दिया। जो पढ़ना नहीं चाहते थे वो पढ़ लिया, देख लिया। जो सुनना नहीं चाहिए था वो सुन लिया। जो बोलना नहीं चाहिए था वो बोल लिया। जिसे स्पर्श करना नहीं चाहते थे पर कर लिया। जो खाना नहीं चाहिए था खा लिया। कर्मेंद्रियों के द्वारा धोखा होना अर्थात हार, और हार अर्थात फीलिंग आ जाना, दुखी हो जाना, उदास हो जाना, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उतरती कला और हार अर्थात क्या? पहले वो प्रश्न है, हार किसको कहेंगे?
हार बनाने
वाले। यहाँ हार खाएंगे तो धर्मराज की मार पड़ेगी, सतयुग में देवताओं के लिए हार पहनाने पड़ेंगे और द्वापर से बनाने पड़ेंगे। तीन चीजें हैं, वो दूसरी बात है। वो यहाँ अगर हार हुई तो क्या क्या होगा? संगम पर क्या होगा, सतयुग में क्या होगा और द्वापर में क्या होगा? नहीं, वो बाद में। पहले हार अर्थात, हार अर्थात क्या क्या बताया अभी तक? एक तो कर्मेंद्रियों के वश हो जाना, हार अर्थात उतार चढ़ाव, हार अर्थात मन की खुशी गायब हो जाना, फिर से इमर्ज होना, उनका क्या वशीभूत हो जाना, संस्कार के वशीभूत हो जाना, आदत के वशीभूत हो जाना, अर्थात हार। स्थिति का गिर जाना ही हार है। श्रेष्ठ स्थिति में चल रहे, अचानक कोई एक कारण आया और स्थिति गिर गई। स्थिति गिरते ही अमृत वेला खत्म, मुरली में रस खत्म, तीव्र पुरुषार्थियों के संगठन से दूर, मौसम से प्रभावित हो जाना, बारिश बहुत है, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजों की वजह से ज्ञान और योग का प्रभावित हो जाना, यह भी हार ही समझना। और हार अर्थात अमृत वेला न उठना हार है, और थोड़ा लेट उठना थोड़ी हार। अच्छा, उठ गए और उसके बाद में सोना नहीं, हार है या नहीं है? यह है, हार ही है। और ये तो परिभाषा है हार की। इस जीवन में हार अर्थात मन की श्रेष्ठ स्थिति का गिर जाना, जो श्रेष्ठ दिनचर्या बनाया है उससे दूर हट जाना, श्रेष्ठ संगठन में है उससे दूर चले जाना, रस कम हो जाना योग में और ज्ञान में, या फिर ज्ञान योग को छोड़कर और दूसरी दूसरी बातों में रस उत्पन्न हो जाना, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, साधन, सुविधाएं, सुविधाओं में लिप्त हो जाना, ये जीवन वैराग का जीवन है, इस वैराग को छोड़कर विलासिता के जीवन के पथ पर चले जाना, सुख सुविधाओं के इस अंबार में खो जाना, अर्थात हार, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो जाना, अर्थात अलौकिकता की कमी है वहां पर। वस्तु और व्यक्ति यदि प्रभावित कर रहे हैं तो, आकर्षित कर रहे हैं तो, और तो व्यक्ति से प्रभावित हो जाना, वस्तु से प्रभावित हो जाना, व्यक्ति में फंसना, वस्तु से फंसना, में फंसना अर्थात हार। खाना और बोलना दोनों से वो बोल दिया, खाना और बोलना दोनों ही वश में ना होना, वो उसी में आ जाएगा, कर्मेंद्रिय चित्त न होने में, बाप से संबंध विच्छेद हो जाना, बाप से दूर हो जाना, संबंधों की अनुभूति ना होना, प्रेम की अनुभूति ना होना। योग में तो सब कर रहे हैं परंतु कोई प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, संबंध का अनुभव नहीं हो रहा है, बस करना है करके कर रहे हैं, संबंध की अनुभूति नहीं हो, प्रेम का कम हो जाना ईश्वर के प्रति, मधुबन के प्रति, मुरली के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, अर्थात हार। और आलस्य के अधीन हो जाना, मंजुबन क्या हो जाता है उससे, करेंगे देखेंगे सोचेंगे हो जाएगा, ये सभी है आलस की निशानी। अब करना है, जितना करना है, जो करना है, अभी करना है, अब करना है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। आज के वरदान में तीव्र पुरुषार्थ को परिभाषित किया है बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अब करना। आलस भी विशेष विकार है, विशेष विकार है। निर्बल संकल्पों को किससे समाप्त करना है, उल्लास से, उमंग से, उत्साह से, एंथुसियाज्म, ज़ेस्ट से समाप्त करना है आलस के निर्बल संकल्पों को। उल्लास में आना है, कमाई है तो आलस के अधीन हो जाना, विशेष विकार कहा बाबा ने। वो सारे विकारों को तो जीता परंतु आलस है अर्थात आगे नहीं बढ़ सकते। हार का अनुभव होना इस जीवन में, खुशी का गुम हो जाना अर्थात हार। इस जीवन में खुशी नहीं रही, अमृत वेले उठते ही उदासी, अमृत वेले उठते ही थकान का अनुभव, अमृत वेले उठते ही दुख का संकल्प, दर्द का संकल्प, जीवन में निराशा अर्थात हार। ये सारा यदि हो रहा है, सबसे पहले तो आवश्यक है हार को स्वीकार करना कि हाँ हार हुई है, अब जीतना है। आत्मा अपनी हार, अपनी पराजय को स्वीकार ही नहीं करती है, सोचती है ये विजय है, या फिर सोचती ही नहीं इसके बारे में कुछ, जो चल रहा है चलने दो। सबसे पहले यह जागृति, यह जागरण कि हमारी हार हो चुकी है, अहंकार को बहुत चोट पहुंचाता है संकल्प, मनुष्य के अहंकार को बहुत पीड़ा देता है ये, हम और हार कैसे, इतने बड़े बड़े सम्मानों पर तो हम बोलते रहते हैं और दूसरों को भी बताते रहते हैं मैं विजयी रतन हूं, और हम हार कैसे स्वीकार कर ले। परंतु अगर दिनचर्या ऐसी हो रही और मन में ऐसे संकल्प उत्पन्न हो रहे और ऐसे भाव प्रकट हो रहे, तो सबसे पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हार हुई है, अब सोचो क्यों हुई है, कहां गलती हुई, क्या हुआ, कारण क्या है, कारण को ढूंढो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहां कमी रह गई है, कहां लीकेज है, उसको ढूंढो। लीकेज को ढूंढना इतना आसान नहीं है चंद्रशेखर भाई। ज्ञान सरोवर में 3 डैम हर साल सब कुछ करते हैं डैम को ठीक करने के लिए, यहां सीमेंट लगाया, वहां सीमेंट लगाया, यहां ठीक किया, वहां ठीक किया, फिर भी लीकेज हो जाता है। कहां से होता है पता ही नहीं चलता है, थोड़ा तो लीक होता ही है, कितना भी भरो उसमें, कितना भी मरम्मत करो, लीकेज अति सूक्ष्म होता है। कहां 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 है वो लीकेज, कहां गलती हो रही है, कहां उल्लंघन हो रहा है, कहां पर हम भूल रहे हैं, कहां हम भटक रहे हैं, कौन सी पगडंडी पर हम खो रहे हैं। इस हाईवे को छोड़कर, राम इंटरनेशनल हाईवे, इस हाईवे को छोड़कर कहां हम छोटी छोटी गली गलियारे और पगडंडियों में खो रहे हैं और सोच रहे यही सही मार्ग है। जब भूल जाए मार्ग, उचित होगा कि किसी ऐसे से पूछे कि जो हमें लगता है उस मार्ग पर है, जो श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है, ज्ञान में स्थित है, योग में स्थित है, जिनकी दिनचर्या फिक्स्ड है। हो सकता है उनके पास कोई सूत्र है जो हमने नहीं जाना है अब तक, जिनका रेगुलर अमृत वेला है, शायद हम उनसे ज्यादा उन्होंने कुछ तो है, कुछ तो पाया है, कोई धारणा हमसे अधिक समझी है, कोई संस्कार ऐसा अपने में निर्माण किया है जो हमने अब तक नहीं है, और जो ज्ञान योग में अति आवश्यक है, इतने समय इतने साल चलने के बाद भी अब तक हमारे जीवन से वो छूटा हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हार क्या है, दूसरा है हार को स्वीकार करना, और फिर संकल्प, तीसरा है अब संकल्प, अब जीतना है। हार खा ली, पराभूत हो गए, पराजय हो गई, परंतु अब जीतना है, ये खेल अब बंद करो। बाबा कह रहे हैं विजयी होना या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक परिस्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। फिर है संकल्प, फिर है प्रतिज्ञा, वचन, स्वयं से उत्थ, प्रॉमिस, प्लेज। ढूंढ लिया कहां हार हो रही है, अब उसको मिटाना है, और उसके बाद में है फिर कर्म, एक्शन, स्वयं स्वयं को देखना कहां कहां मेरी हार हो रही है। साधनों से भी एक कारण है, साधन हार दिलाते, साधन अवलंबित बनाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड, उसके उससे प्रभावित होते हैं, निर्भर हो जाते हैं उसके ऊपर। वो है तो साधना होगी, अविनाशी साधना। उस दिन मुरली चली थी ना 31/12/2070 की, 31 December 1970 की, अविनाशी साधना विनाशी साधनों के आधार पर, नहीं 1970 एक ही फाउंडेशन पर बिल्डिंग, रेत के फाउंडेशन पर। तो उस मुरली में बाबा ने कहा है, तब कहा है 70 में, जबकि इतने साधन भी नहीं थे, तभी कह दिया कि इन साधनों के वशीभूत नहीं होना। साधन बढ़ेंगे, इसकी भी भविष्यवाणी मुरली में कर चुके हैं बाबा, साधन बढ़ेंगे, परंतु हमारी साधना अविनाशी है। किसी भी साधन के ऊपर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट वो है तो जाएंगे, वो नहीं है तो नहीं जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट, चाहे संचार माध्यम, मीडिया, या इस तरह के जो भी साधन है, आज है कल नहीं होंगे। साधना उसके उसके आधार पर ना हो, या फिर जितने साधन कम होते साधना उतनी ही तीव्रतर होती है। साधन तो उसको और थोड़ा कम करते हैं, नहीं होंगे तो हो सकता है साधन और तीव्र हो जाए। तो हार क्यों हो रही है उसको ढूंढना, कहां हार हो रही है, मान सम्मान में की चाहना, ये इच्छा उत्पन्न होना कि मान मिले, मान हो, अहंकार को बहुत संतुष्ट करता है ये सारी बातें। परंतु साधना के पथ से भटक जाते हो। डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स, विवेकानंद ने कभी कहा है, डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। जितनी इच्छाएं हैं उसमें से इच्छा नाम की, एक योगी, एक तपस्वी, एक सन्यासी जो इस पथ पर निकल गया और जहां मान आ जाए बीच में, वो तो आएगा ही, परंतु उसमें जो लिप्त हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। सारी दुनिया हमारे पीछे और हम उसके पीछे। दूसरा ग्रुप, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण न हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे, कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाए। लुढ़कने वाले, लोटे नहीं बिन बेपन देखे, लुढ़कने वाले लोटे नहीं। कभी कहां लुढ़क जाओ, कभी कहां एडजस्टेबल नहीं ऐसे नहीं जहां गए व्यक्ति से, स्थान से, वैभव से प्रभावित हो जाना, विशेषताओं से प्रभावित हो जाना, यह नहीं। कमाल करने वाले बनो।
भक्ति में बताया पतित बना ये प्रेम से, प्रेम की इच्छा से पतित बने, और पावन बने भी प्रेम से। सब सृष्टि चक्र प्रेम के आधार
पर, प्रेम के आधार पर तो है, परंतु वह प्रेम जो गिराने वाला है वो वासना बनती है, वो प्रेम जो चढ़ाने वाला है वही वास्तव में प्रेम है। प्रेम को, प्रेम का गलत हाथों में पड़ जाना प्रेम तो है ही, जो काम विकार में जाते वो भी कहते हैं हमारा प्रेम ही है, वो थोड़ी ना मानते हमारी कोई बुरा कर्म है, वो तो कहते यही प्रेम की अभिव्यक्ति है। परंतु प्रेम और काम में अंतर है थोड़ा। प्रेम में अहंकार है, नहीं प्रेम में नहीं, काम में वो सोचता है कि जैसे कोई फूल को देखा, एक है उस फूल को तोड़ लेना, ये काम है मेरा है। एक है प्रेम अर्थात उस फूल को वही रहेगा, उसकी संभाल करना, वो और बढ़े और सुगंधित हो, उसकी सुगंध बहुतों तक पहुंचे, यह प्रेम का भाव है। काम अर्थात ये मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, यहाँ काम उत्पन्न होता है, यहाँ लगाव उत्पन्न होता है, यहाँ अहंकार उत्पन्न होता है, यहाँ वासनाएं प्रकट होती है, फिर वो प्रेम कब रहता है और कभी काम में परिवर्तन। काम और प्रेम और प्रेम और काम, यही इसमें खो जाता है व्यक्ति, समझ में ही नहीं आता है जीवन में ये प्रेम है या काम है, इज इट लव और लस्ट। अपनी ही लस्ट को, अपने ही काम को यदि कोई प्रेम करता है, प्रेम कहता है, अपने काम की वासना को यदि कोई प्रेम की संज्ञा देता हो, तो व्याकरण को बदलने की आवश्यकता है।
और पावन भी बनाया प्रेम से,
वो प्रेम की परिभाषा वही बता रहा हूं, प्रेम और काम अलग अलग है। प्रेम का संबंध आत्मा से है, काम का संबंध देह से है। प्रेम का संबंध अतीन्द्रिय सुख से है, काम का संबंध इंद्रिय सुख से है। प्रेम ऊपर ले जाने वाला है, काम गिराने वाला है। प्रेम इच्छाओं से परे है, एक्सपेक्टेशन से परे है, काम निर्भर है, इच्छाएं है उसमें, कामनाएं उसमें है। प्रेम जो है उसमें किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं, प्रेम इंडिपेंडेंट है, काम की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का होना आवश्यक है। बिना दूसरे व्यक्ति के काम की पूर्ति नहीं होती, वो उसकी देह की आवश्यकता है। वो अंतर है दोनों में। बाबा कह रहे सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना, कोई भी कर्म साधारण नहीं, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले, कभी कैसा वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ, लुढ़कने वाले लौटे नहीं। कभी कहां लुढ़क जाओ, कभी कहां, भरोसा नहीं है। किसी स्थान पर जा रहे तो वहां कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो, अविनाशी है, अविनाशी बनाने वाले है, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हरेक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो, वाणी से, सेवा से। प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट अपरोक्ष प्रमाण क्या है, सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ प्रमाण, एविडेंस। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों के तीनों से साथ साथ सेवा करो। इसको कहते हैं कमाल। तो यहाँ पर कीवर्ड कौन सा है, कुमार अर्थात जहाँ कोई खींचे वहां खींच नहीं जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं, किसी से भी प्रभावित नहीं, या फिर कहो इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, इतना स्वयं में विश्वास कि किसी पर भी निर्भर नहीं, किसी पर भी आधारित नहीं, अवलंबित नहीं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है। एक बहुत ही श्रेष्ठ कोई एक साधु था, फकीर था, योगी था। उसके जब मरने का समय निकट आया, अब मरने ही वाला है, अपने शिष्य को बुलाया और कहने लगा मेरे जूते कहाँ है, जूते लाओ। चिकित्सक कह गया कि अभी थोड़े ही समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी शाम तक। वो कहने लगा अपने शिष्य से मेरे जूते जल्दी लेकर आओ। शिष्य ने कहा जूते का क्या काम है, अब मरने का समय आ चुका है। वो कहता है मैं मरूंगा परंतु अपनी कब्र खुद खोदूंगा, जूते जल्दी ले आओ। जूते लेके आता है और भागता है और जाता है कब्रिस्तान की ओर। कहता है कि ये मनुष्य की बहुत पुरानी आदत है, सारे जीवन भर तो किसी के सिर पर बैठ के जीता है और मरता है तो दूसरों के सिर पर जाता है, ये पुरानी आदत है, इस आदत को मैं तोड़ना चाहता हूँ, दूसरों के सिर पर बैठकर शमशान घाट तक जाने की। इसके लिए मैं खुद चलकर वहां जाऊंगा, खुद अपनी कब्र खोदूंगा, उसके बाद ही मैं मरूंगा। फटाफट जूते उसके शिष्य लाते हैं, जूते पहनता है, कैसे तैसे कब्र तक पहुंचता है स्वयं को लेकर, किसी के कंधे पर नहीं, खुद कब्र खोदता है, मिट्टी निकालता है, कुदाली से खोदता है, मिट्टी निकालता है, अंदर जाके लेटता है। उसके बश में होता तो शायद वो मिट्टी भी खुद ही डालता। स्वीकार नहीं है किसी पर निर्भर होना, हम अकेले रहेंगे, स्टैंड अलोन, कोई नहीं चाहिए इस संसार का, ना तो कोई शेयर करने के लिए चाहिए, हमारे दिल की बात जरूरत ही नहीं है इस संसार के किसी व्यक्ति की, केवल एक काफी है। क्यों चाहिए, जिससे भी बताओगे, जिसको भी पत्र लिखोगे, जिसको भी फोन करोगे, जिसको भी मैसेज करोगे, एसएमएस करोगे, ईमेल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, उससे एक लगाव उत्पन्न होगा और उससे जो संबंध है परमात्मा से वो कम होगा और धीरे धीरे वो आदत बनेगी हर बात उसी को बताने की। फिर उसको कैसे बताओगे, वो कैसे कोई मदद करेगा। स्टैंड अलोन, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, प्लेटोनियस नाम का एक विचारक है, उसने कहा है इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये उड़ान है एक की एक की तरफ, अकेले की अकेले की तरफ, किसी को लेकर यहां नहीं चलना है। लेकर चलना ये भ्रम है और भ्रांति है, जो मनुष्य सोच रहा है ये मेरे साथ चले तो बहुत अच्छा चले हम, उसके मन की मूर्खता है, मूर्खता है। Thank you.
और